वे अनादि हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान ने जन्म दिया इसको, इसको तो भगवान को कौन जन्म दिया? ये प्रश्न पूछना ही मूर्खता है। वास्तव भगवान का मतलब ही है कि जिसको कोई पैदा नहीं किया। कभी कभी लोग हैरान हो जाते हैं, पैदा नहीं किया, देवकी ने तो पैदा किया। नहीं, देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। भागवत में लिखा गया है जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है वैसे देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। हम लोग अपने मां के देह से प्रकट नहीं हुए हैं, वास्तव में जन्म हुआ है। तो हम लोगों के जन्म से बिल्कुल विलक्षण है भगवान का जन्म। इसीलिए गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम्। और मेरे जन्म कर्म को जो जान जाता है तत्व से, वो जन्म कर्म से मुक्त हो जाता है। तो जिसके जन्म कर्म को जानने की ये महिमा है, उसका जन्म कर्म मैटेरियल कैसे हो सकता है? तो दिव्य जन्म होता है। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछा कि हु टॉट गॉड, भगवान को कौन पढ़ाया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं गधा कहेंगे। ये प्रश्न पूछ रहे, भगवान का मतलब पहले जानो कि क्या है भगवान, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। वो स्वतः सिद्ध ज्ञान है, स्वतः सत्ता विशिष्ट है, सबको उन्होंने जन्म दिया है, उनको कोई नहीं पढ़ाया है, उनको कोई नहीं जन्म दिया है, सबको ज्ञान वे दिए हैं। इस विश्व के गुरु हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को उन्होंने वेद ज्ञान दिया। विश्व सृष्टि कैल वेद ब्रह्मा के पढ़ाईल, ब्रह्मा जी को पढ़ाया वेद भगवान ने, मन द्वारा ही संकल्प से उनको चारों वेदों का विद्वान बना दिया। ये भगवान की विशेषता है। संकल्प मात्र से किसी को पढ़ा देना, यह मनुष्यों के हाथ में नहीं है। देवता भी ऐसा नहीं कर सकते, केवल भगवान कर सकते हैं। सोचते हैं कि यह लड़का इतना पढ़ जाए, उधर भगवान का सोचना और वो पढ़ जाएगा तुरंत। तो मनुष्य को तो पढ़ाना होगा, तो इधर भेजो स्कूल में, इधर कॉलेज में भेजो, इतना मेहनत, ये छुट्टी में समर क्लास लो, तो इतना मेहनत करना पड़ता है। माता पिता तो कितना संकल्प करते हैं कि ये सबसे ज्यादा अंक लावे, पास हो जाए। उनके संकल्प से होता क्या है कि भगवान ने तो संकल्प किया कि यह मेरा पुत्र ब्रह्मा समस्त वेदों का विद्वान हो जाए, हो गए तुरंत। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, हृदय करते हृदय से ही संकल्प से भगवान ने बना दिया। भगवान को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, उनका सोचना और कर्म करना दोनों एक है, इसलिए तत्काल हो जाता है। तो उनको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञम आदिम पुरुषम सनातनम। एक तो वे अनादि हैं। अनादि का यह अर्थ है कि ऐसा कोई काल आप पूर्व में नहीं सोच सकते जिस समय भगवान न हो। कभी कभी कुछ लोग सोचते आखिर किसी न किसी दिन तो भगवान एग्जिस्टेंस में आए होंगे। अपने परिच्छिन्न बुद्धि से सोचा करते हैं, नहीं कभी ना कभी तो चालू हुआ होगा उनका अस्तित्व। नहीं, और वे अनंत है, सनातन है। सनातन का यह अर्थ है कि वो अनादि काल से तो है ही, अनंत काल तक रहेंगे, काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, हमेशा रहेंगे। और कौन सनातन है बताइए? मनुष्यों में तो कोई सनातन है ही नहीं, तो हम लोगों का अनुभव है न तो कोई रहा है, न तो अनादि था न सनातन था। जन्मदिन भी लिखा जाता है और निधन तारीख भी लिखा जाता है, बर्थडे, बर्थ डेट एंड एक्सपायरी डेट, तो आदि और अंत। लेकिन भगवान कब से हैं इसको कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत काल हो गया जब हुए होंगे। नहीं हुए होंगे नहीं, यहां तक कि भागवत में लिखा गया है कि भगवान को यह भी नहीं कह सकते कि हैं, क्योंकि यह अभी एक काल का सूचक है। भगवान गीता में जीव मात्र के लिए कहते हैं, आत्मा के लिए, कि न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। न जायते कभी जन्म नहीं लेता है, कभी जन्म नहीं लिया है आत्मा, देह नहीं, देह के से व्यतिरिक्त आत्मा का वर्णन कर रहे हैं भगवान। न जायते ये कभी जन्म नहीं लेता है, यह कोई कहे अरे शरीर के साथ तो प्रकट होता है, प्रकट होता है लेकिन कभी जन्म नहीं लेता है। न जायते मृते वा कदाचित, और न तो कभी मरता है, कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, यह न कभी हुआ है और न तो हो रहा है और न होगा। ये संस्कृत शब्द की पकड़ देखिए, नायम भूत्वा, भूत्वा का अर्थ है हो करके, ऐसा नहीं था कि कभी हुआ, और न भविता, और ऐसा नहीं कि भविष्य में होगा, और न भूय, न इस समय हो रहा है। अज नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, यह अज है, शाश्वत है, नित्य है और पुराण है, अनादि है। जब आत्मा इस दशा में है, आत्मा की यह बात है तो सर्वज्ञ सनातन परम पुरुष भगवान विष्णु के लिए क्या कहना। लेकिन मनुष्य अपने माया ग्रस्त बुद्धि से सोचा करता है, भगवान की कल्पना किया करता है, और भगवान है तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, और शक्ति घटते घटते एक दिन तो उनको भी मरना पड़ेगा, इस तरह से बोलते हैं, प्रवचन करते हैं मूर्ख लोग इस मनुष्य समाज में। अब वृत्रासुर जी बोल रहे हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, सनातन हैं, अनादि हैं, पुरुष हैं, और इस विश्व के उत्पत्ति क्रिएशन और स्थिति मेंटेनेंस और प्रलय इनाइहलेशन सब उनके अधीन है, उनके डायरेक्शन से सब सृष्टि होती है, इसका मेंटेनेंस होता है, और उनके डायरेक्शन से ही ध्वस्त कर दिया जाता है संसार। तो वही पुरुष जो इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, सदा विजय उन्हीं की होती है और किसी की नहीं। तो मैं आपके हाथ से वज्र गिरा दिया तो आप ये मत समझिए कि सदा मैं ही जीतूंगा, आप वज्र को उठाइए और प्रयास कीजिए। लोका सपाला जस्य मे स्वसंत विवसा वसे द्विजा इव शिचा बद्धा सकाल इह कारण कारणम सकाल इह कारणम। अब कह रहे हैं कि इस विश्व में जितने भी जीव हैं, ऊपर के लोकों में, मध्य में या पाताल में, और उन जीवों के जितने भी नायक हैं, वे सब भगवान के अधीन हैं। सपाला लोका सपाला, सपाला का अर्थ है पालकों के साथ। प्रत्येक लोक में भगवान ने बहुत जीव बनाया है, और इसके साथ साथ जीवों के कुछ पाल होते हैं, पाल का अर्थ उनका पालन करने वाले पति स्वामी, सब जगह ये है। इस पृथ्वी पर ही देखिए, सर्वत्र कोई न कोई राजा है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, एक देश के स्तर पर, और देश के स्तर से घट करके अगर स्टेट में है तो स्टेट का कोई न कोई प्रधान है, स्टेट से नीचे क्या होता है इधर कमिश्नर, काउंटी, डिस्ट्रिक्ट, तो उनके भी हेड होते हैं, उसमें भी कई शहर होते हैं, तो शहर का मेयर होता है, और उस शहर में भी कितने कारखाना है, परिवार है, तो परिवार का कोई हेड है, तो कोई मैनेजर है किसी का, इस तरह से हैं। तो अलग अलग ग्रुप में जीव हैं, और उनके कुछ न कुछ लीडर हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। तो जीव सब और मालिक सब लोग भगवान के अधीन हैं। द्विजा युवा शिक्षा बद्ध है, वृत्रासु जी कहते हैं जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी हों, अथवा पिंजड़ा में फंसे हुए पक्षी हो तो वे स्वतंत्र नहीं हैं। बहेलिया जहां उनको ले जाना चाहता है ले जाता है, उस तरह से भगवान के अधीन सभी जीव। तो जब चाहेंगे कि ये जीवित रहे तो जीवित रहेगा, जब चाहेंगे मार देना तो मार देंगे। बहेलिया जब फंसाता है जाल में पक्षियों को तो उसकी इच्छा पर है कब तक जीवित छोड़ेगा, नहीं तो मार मार करके बेच देगा। तो इस सिचा व द्विजा बद्धा, द्विजा कह गए हैं यह पक्षी को। पक्षी का दो बार जन्म होता है, वो भी ब्राह्मण है। द्विज शब्द का ही अर्थ होता है दो बार जन्म लिया हुआ। तो एक बार अंडा के रूप में जन्म लेते हैं पक्षी और दूसरी बार अपने शरीर में आते हैं, तो इसलिए उनको द्विज कहते हैं। तो पक्षी जैसे जाल में फंसे हुए हों, जाल से निकलने की शक्ति उनकी नहीं है, तो उनका जीवन या मरण सब व्याध के इच्छा के अधीन रहता है। कितना हम लोग देखते हैं, कभी कभी लोग मुर्गियों को ट्रक में ले जाते हैं। ये जितने आप देखते हैं चिकन या मांस खाने वाले, इन सबके कुछ वध स्थल होते हैं जहां पर ये लोग वध करते हैं, चिड़िया का, मुर्गी का या बकरा का या और सब का, वहां से लाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है किस तरह से पक्षियों का जीवन अधीन होता है जो पकड़ लेता है, खासकर ब्याध। तो इस तरह से सारे चर अचर जीव अपने अपने मालिकों के साथ, लीडरों के साथ भगवान के अधीन है। स काल यह कारण, वही काल है, कलयति इति काल, जो सभी जीवों को गिन गिन करके रखे और अपने कंट्रोल में और उनमें परिवर्तन करे उसको काल कहते हैं, वो है भगवान। तो भगवान ही कारण है जय आदि में। कब किसकी जय होगी, कौन जीतेगा और किसकी पराजय होगी, कौन डिफीट होगा या कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ कृष्ण के अधीन है। ये प्रवचन चल रहा है युद्ध में। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि मैं जीता हूं तो आप नहीं जीतेंगे, और मैं क्या जीता हूं आगे वो बताएंगे कि अभी तो आपका अस्त्र हाथ से गिरा है, मेरा तो हाथ गिर चुका है, मेरी बाह कट गई है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। वृत्रासुर जी यहां तक कहे हैं कि सुख या दुख में, हानि लाभ में, जय विजय में सम रहना चाहिए, इस विषय में मैं ही आपका गुरु हूं, आप मुझसे सीख सकते हैं। ये अपने प्रवचन के लास्ट दूसरे श्लोक में कहे। तो इस बात पर विचार करना चाहिए हमेशा किस तरह सारा विश्व भगवान के अधीन है। बड़े बड़े लोग सोचे थे कि हम विश्व विजयी हैं, हम विश्व विजयी हैं, हमारे सामने कौन है, लेकिन ऐसी उनकी मृत्यु हुई, सुनकर के आज भी दुख होता है कि वो ऐसे लोगों की ऐसी मृत्यु है। कुछ लोग विश्व के इतिहास में ऐसे हुए, मेरी अधीनता स्वीकार करो नहीं तो बम पटकेंगे, हिटलर आदि यही कहते थे। नेपोलियन कहता था कि डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द निकाल दो, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वही आदमी एक दिन कारागृह में हथकड़ी बेणी में पड़ गया। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, हथकड़ी बेड़ी में कारागृह का अंदर पड़ा है। पहले तो बहुत विजय हुई थी उसकी, हमेशा कई सौ सैनिकों के साथ चलता था नेपोलियन। बस मेरी अधीनता स्वीकार करो अन्यथा फिनिश कर दूंगा, यही नारा था। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन पछताई है अवसर बीते, एक दिन मन पश्चाताप करेगा, अवसर बीत जाएगा बिना भगवान के भजन के। तो सहस बाहु दस बदन आद नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठी रीत। सहस बाहु दस बदन आद नृप, एक ऐसा राजा था जादव जिसको 1000 बाह प्राप्त थे, अगर उसमें से एक आध कटे भी तो कई सौ बचेगी बाह। और भगवान दत्तात्रेय जी की सेवा किया था तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उसको 1000 बाह मिली, तो बहुत उदंड हो गया। तो भगवान ने परशुराम जी के अवतार में उसके बाहों को काट दिया। वे लोग युद्ध करते थे तो कभी कभी बिना मतलब के युद्ध करते थे कि बाह में खुजली हो रही है, दर्द हो रही है बिना लड़े हुए, इसलिए चलो दिग्विजय करो, यहां जाओ वहां जाओ, यहां करो वहां करो। एक बार ये सहस्र बाहु अर्जुन नर्मदा जी में विहार कर रहा था कुछ स्त्रियों के साथ, बरहिस्मतीपुर जबलपुर के पास। तो सहस्र बाहु ने अपने 500 भुजा को इधर किया, 500 भुजा को इधर किया, बीच में खड़ा हो गया, इसलिए बांध बन गया, पूरा पक्का डैम बन गया। तो पानी नीचे नहीं जा रहा था, पानी ऊपर जमा होने लगा, बांध बन गया। और उधर रावण अपना शिविर लगाया था नदी के तट पर, अपना टेंट सेंट लगाया था, दिखाने गया था कि मैं भी बहुत शानदार राजा हूं, कौन होता है सहस्र बाहु अर्जुन। और सहस्र बाहु स्नान करने में अपने हाथ से डैम बना दिए, बांध बना दिए, वो जानता था कि रावण का उधर डेरा पड़ा हुआ है, उसके सैनिकों ने कहा है, तो उसके टेंट फ्रेंड सब पानी में डूबने लगे। तो बहुत क्रोधित हुआ रावण, कौन बदमाश ऐसा किया, कौन किया कौन किया, वो आया लड़ने के लिए। तो सहस्र बाहु अर्जुन कीड़ा की तरह उसको पकड़ लिया एक हाथ से रावण को, ऐसा वर्णन। और देखने लगा कि 10 सिर वाला एक कीड़ा कौन है, इंसेक्ट कहां से आए, ऐसे देखने लगा। बाद में उसके पिताजी आए रावण के, छुड़ा दे छोड़ दीजिए, इसकी यही आदत है, ये है वो है, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो एक कथा है कि रावण एक बार बाली के पास गया, अंगद जी के पिताजी बाली के पास युद्ध करने, तो बाली उस समय संध्या वंदन कर रहे थे। तो कहता था मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम पूजा छोड़ो, मैं लड़ने आया हूं, लड़ने आया हूं। तो बाली तो उसे मौन थे, गायत्री जप रहे थे, तो रावण को पकड़ करके अपने काख में दबा करके गायत्री करने लगे, और 6 महीने तक अपने कुक्षी में कोख में दबा ली और पड़ा रहा। तो इस तरह से पराजय होती है, रावण बहुत बड़ा विश्व विजेता था लेकिन इस तरह से पराजय होती। सहस्र बाहु अर्जुन इतना बड़ा राजा था लेकिन भगवान परशुराम ने कुल्हाड़ी से उसको काट कर खत्म कर दिया, परशु से मार दी, खत्म की। इस तरह के लोग हुए। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि सब समय जय केवल भगवान की होती है, भगवान चाहते हैं जिसको जय दिलाना तो उसकी जय होती है, जिसको डिफीट करना चाहते हैं उसका डिफीट होता है, हारना जितना अपने हाथ में नहीं है। और कहते ओजह सहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जडम। इंद्रियों का की स्फूर्ति, और इसको ओज कहते हैं, इंद्रियों की स्फूर्ति सह मनोबल शरीर बल और जीवन की अवधि प्राण और अमरत्व या मृत्यु, ये सब भगवान देते हैं। भगवान के कारण किसी के इंद्रियों में शक्ति आती है। हम लोगों के पास बहुत इंद्रियां हैं और आज तक जितने भी जीव जन्म लिए मनुष्य आदि सबको इंद्रियां मिली थी। तो आंख में देखने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, हाथ से काम करने की शक्ति, इसको ओज कहा जाता है संस्कृत में, ओज। तो ओज कौन देता है, वास्तव में भगवान जब दे रहे हैं शक्ति तब इंद्रियां काम कर रही हैं, नहीं तो एक दिन यही इंद्रियां किस तरह से कार्य क्षमता से हीन हो जाती हैं, ये सबका अनुभव है।